का था, रूह वही रूप नया।
सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी। सुप्रिया और सिंहासन बत्तीसी में अभी तक आपने सुना कि कैसे हंसती खेलती सुप्रिया घर में डकैती के बाद सहम सी गई थी। उसका मन हल्का करने और वातावरण बदलने के लिए दादू दादी और सुप्रिया अपने गांव के घर में आ गए। गांव के घर के बाहर एक नीम का पेड़ था जिस पर एक काबुली वाला आता और बच्चों को कहानियां सुनाता। आइए सुनते हैं काबुली वाला की कहानी। कहानी सिंहासन की खोज। यह उन दिनों की बात है जब राजा भोज उज्जैन नगरी में राज्य करते थे। राजा भोज आदर्शवान, नीति निपुण एवं न्यायप्रिय राजा थे। समस्त अर्थव्यवस्था उनकी ख्याति की प्रशंसा करती और राजा भोज के राज्य में अपने आप को खुश एवं संपन्न मानती थी। उज्जैन नगरी के अंतिम छोर पर एक कुम्हारों की बस्ती थी। इसी बस्ती के आसपास मिट्टी के छोटे छोटे पहाड़ थे जिनकी मिट्टी इतनी सुगंधित और चिकनी थी। कुम्हार वहां की मिट्टी से बहुत ही आकर्षक और मनमोहन बर्तन बनाया करते थे। उनके द्वारा बनाए गए बर्तन दूसरे राज्य में भेजे जाते जहां उनकी बहुत मांग थी। यही कारण था कि राजा भोज के राज्य में सभी कुमार बहुत ही संपन्न थे। राजा भोज के राज्य में खेतीबाड़ी, पशुधन सब बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। इस बस्ती में एक गड़ियारा ब्रिजभान कई वर्षों से काम करता चला आ रहा था। ब्रिजभान के घर से कुछ दूर पर चतुरी चमार का घर था। वह दोनों पहले इतने प्रिय मित्र थे पर इधर कुछ दिनों से उनकी अनबन बनी हुई थी। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब चतुरी हमेशा अफसर की तलाश में लगा रहता जब वह ब्रिजभान को की कोई कमजोरी जान जाए और उसका लाभ उठा सके, मगर उसे कोई ऐसा मौका ही नहीं मिलता। ब्रिजभान का एक लड़का था, उसका नाम था चंद्रभान। चंद्रभान काफी सेहतमंद और कदकाठी में अपने पिता से भी कद में आगे था। चंद्रभान भी जानवरों को चराने के लिए पहाड़ियों की तरफ टीलों पर जाया करता। वह टीले पर जाता, जानवरों को आजादी से चरने के लिए छोड़ देता और टीलों पर लेटकर लंबा हो सो जाता। धीरे धीरे लोग उसे आलसी और निकम्मा कहने लगे। शक्ल सूरत से भोंदू सा दिखने वाला ब्रिजभान जब टीले पर जा बैठता तो ज्ञान की बातें करने लगता। वह बच्चों को टीले पर एकत्रित कर उनसे ज्ञान ध्यान की बातें करता। कभी कभी तो बड़े भी उसमें शामिल हो जाते। यही चंद्रभान जब टीले से उतरता तो तब एक अनपढ़ गवार गांव वाले की तरह नजर आता। एक दिन अचानक शाम को सोकर उठने के बाद चंद्रभान जोर जोर से चिल्लाने लगा, उचित या अनुचित बात मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, यहां तक कि तुम्हारा राजा भी नहीं। उसके चेहरे पर भय या आतंक का कोई चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन आसपास खड़े लड़कों के चेहरों का रंग उड़ गया। वे सोचने लगे, अगर इस बात की खबर राजा तक पहुंची तो चंद्रभान के साथ साथ वे भी राजा के अपमान के दोषी माने जाएंगे। लड़कों ने चंद्रभान को रोकने की कोशिश करी। चंद्रभान अभी भी राजा के विरुद्ध बोला जा रहा था। चंद्रभान काफी देर तक टीले की ऊंचाई पर चढ़कर राजा भोज के लिए उपशब्द बोलता रहा। यह बात जब चतुरी के कानों में पड़ी तो उसने सोचा कि हाँ, यही मौका था जिसकी तलाश में मैं था। ब्रजभान से बदला लेने का इससे अच्छा मौका हाथ नहीं लगेगा। अगले ही दिन सारा काम छोड़कर उधर गांव में गया जहां चंद्रभान मवेशी चराया करता था। उसने छिप कर देखा कि चंद्रभान टीले पर चढ़कर सो गया। वह छिपा रहा और उसके जगने की प्रतीक्षा करने लगा। काफी इंतजार के बाद चंद्रभान उठकर बैठ गया। तभी वहां दो लोग आए जिनका झगड़ा एक घोड़े को लेकर हो रहा था। उस घोड़े पर दोनों लोग अपना अपना अधिकार जमा रहे थे। चंद्रभान ने उन्हें अपने पास बुलाया और टीले पर बैठे बैठे उनकी समस्या का बहुत ही अच्छी तरह सुझाव दिया। वह अक्सर ऐसे टीले पर बैठे बैठे न्याय किया करता। अगले दिन चतुरी ने चंद्रभान को दो औरतों के बीच एक बच्चे को लेकर विवाद को निपटाते देखा। उस दिन भी चंद्रभान के न्याय की काफी प्रशंसा हुई। अब तो हर रोज का नियम बन गया था, चंद्रभान टीले पर जाकर बैठता और लोग किसी ना किसी मसले का न्याय करवाने उसके पास आ जाते। चंद्रभान दूध का दूध और पानी का पानी ऐसे कर देता मानो उसके बाएं हाथ का खेल हो। चतुरी को ये बात हजम ना हुई। उसने कोतवाल से चंद्रभान की शिकायत करी और कोतवाल को यह भी बताया कि चंद्रभान कैसे राजा के लिए उपशब्द बोलता है। चतुरी के चले जाने के बाद कोतवाल ने उसकी बात पर गौर किया। वह सोचने लगा कि अगर एक गड़ियारे का लड़का स्वयं न्याय करता है तो वह राजा के कार्य में हस्तक्षेप होगा, उसे अवश्य रोकना चाहिए। कोतवाल ने सिपाहियों को चंद्रभान पर नजर रखने का आदेश दिया। उसके सिपाहियों से बोला कि चंद्रभान के पास न्याय करता जाता जो कोई दिखे उसे पकड़कर महाराज के पास लाओ। सिपाहियों ने कोतवाल के आदेश का पालन करना शुरू कर दिया। अगले दिन एक ब्राह्मण, उसकी पत्नी और ब्राह्मण का मित्र राजा के दरबार में लाए गए। ब्राह्मण ने हाथ छोड़कर महाराज से बोला, हरिओम हरिओम महाराज, मैं ब्राह्मण हूं और मेरा काम लोगों के घर जाकर पूजा करना है। कुछ सालों पहले मैं दूर राज्य के नगर सेठ के घर पूजा करने गया था महाराज। उन्होंने मेरी पूजा से खुश होकर मुझे 3 बहुमूल्य रत्न उपहार में दिए। हरिओम हरिओम। इधर 6 महीने पहले जब मुझे दोबारा शहर जाना पड़ा तो मैंने सोचा कि यह बहुमूल्य रत्न अपने इस मित्र के पास रख देता हूं, वह इन्हें सुरक्षा से रखेगा। पर जब अब मैं 6 महीने बाद वापस आ रहा हूं और अपने रत्न इससे मांगता हूं तो यह बोल रहा है कि इसके पास तो रत्न ही नहीं है। हरिओम हरिओम महाराज, मेरे रत्न इससे वापस दिला दीजिए, मेरे साथ न्याय कीजिए महाराज, वह रत्न मेरे बुढ़ापे का सहारा है। राजा भोज ने ब्राह्मण की बातें ध्यान पूर्वक सुनी। कुछ देर सोचने के बाद ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या ब्राह्मण द्वारा लगाया गया आरोप सत्य है? महाराज, ब्राह्मण के मित्र ने कहा, यह बात तो सत्य है कि पुजारी जी मेरे पास पूजा से मिले हुए 3 रत्न रखवा कर गए थे। ब्राह्मण जी ने मुझे वादा किया था कि ये 5 महीने बाद लौट कर आएंगे, पर जब ये 5 महीने तक नहीं आए तो मैंने वह रत्न इनकी पत्नी को लौटा दिए। इस पर राजा भोज ने ब्राह्मण की पत्नी से पूछा, क्या ब्राह्मण के मित्र ने तुम्हें वे रत्न लौटाए थे? यह सवाल सुनते साथ ही ब्राह्मण की पत्नी रोने लगी, हाय महाराज। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा भोज कुछ देर के लिए खामोश हो गए। दरबार में भी सन्नाटा छा गया। तभी राजा भोज ने ब्राह्मण के मित्र से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो यह सत्य सिद्ध कर सके कि तुमने यह रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटा दिए थे? अवश्य राजन, ब्राह्मण के मित्र ने बड़ी फुर्ती से बोला, मैंने गांव के मुखिया और मंदिर के पुजारी के सामने यह 3 बहुमूल्य रत्न ब्राह्मण की पत्नी को लौटाए थे। उसने अपनी सफाई पेश करते हुए बोला। ब्राह्मण के मित्र की बात सुनकर राजा भोज ने उन दोनों लोगों को दरबार में आने का आदेश दिया। जब मुखिया और पुजारी दरबार में आए तो उन दोनों की गवाही ब्राह्मण के मित्र के पक्ष में ही थी। उन दोनों की पूरी बात सुनने के बाद राजा ने अपना न्याय सुनाया। ब्राह्मण और उसकी पत्नी का आरोप निराधार है। इन्हें अपने मित्र पर आरोप लगाने के जुर्म में कारागृह में डाल दिया जाए। हरिओम हरिओम, ये न्याय नहीं है, अन्याय है अन्नदाता, ये अन्याय है अन्नदाता। अगर मेरी जान बख्शी जाए तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। हम तो न्याय के लिए आपके पास आ ही नहीं रहे थे, मैं और मेरी पत्नी तो चंद्रभान के पास जा रहे थे, हरिओम हरिओम, लेकिन आपके सिपाही हमें यहाँ पकड़ कर ले आए, ब्राह्मण ने रोते हुए कहा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा क्रोधित होकर कहा, अगर तुम दोनों पति और पत्नी मेरे न्याय से असंतुष्ट हो तो जाकर उसी से न्याय मांग कर देख लो। मैं स्वयं भी देखना चाहता हूं कि चंद्रभान कैसा न्याय करता है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी वहां से दौड़कर चंद्रभान के पास पहुंच गए। राजा भी भेष बदलकर कुछ सिपाहियों के साथ ब्राह्मण की और उसकी पत्नी के पीछे पीछे चला गया। ब्राह्मण ने चंद्रभान के पास जाकर उसे अपनी विपदा सुनाई। चंद्रभान ने सबसे पहले ब्राह्मण के पहले गवाह मुखिया को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों रे मुखिया, तूने लिए थे वो रत्न, तूने देखे हैं? अच्छा चल, अगर देखे हैं तो उनका आकार और उनका रंग बता मुझे। ऐसा सवाल तो मुखिया ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। चंद्रभान का सवाल सुनते साथ ही मुखिया के चेहरे का रंग उड़ गया। वह लड़खड़ाती हुई आवाज में उसने बोला, रत्न रत्न तो सरकार, रत्न तो नींबू के आकार के थे, और हाँ इतने सुंदर, जैसे आसमान का रंग नीला वैसे वह नीले रंग के थे। ठीक है, तू जा सकता है, चंद्रभान ने दूर खड़े पुजारी को इशारा करके अपने पास बुलाया और यही सवाल उससे पूछा। इस सवाल पर पुजारी भी थोड़ा घबराया और बोला, वह रत्न तो चने के दाने के बराबर थे, और हाँ जैसे मंदिर में मैं टीका लगाता हूँ वैसे लाल रंग के थे। इसके बाद चंद्रभान ने पुजारी को भी दूर भेज दिया और ब्राह्मण के दोस्त को अपने पास बुलाकर डांटते हुए बोला, बेईमान इंसान, ले आ गया तेरा झूठ सामने, कितने पैसे दिए तूने इन्हें झूठी गवाही देने के लिए? पंडित का दोस्त पूरी तरह कांपने लगा, हार कर चंद्रभान के कदमों पर गिर पड़ा और कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बड़ी भूल हो गई। अगर तुम अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहते हो तो इसके रत्न अभी के अभी तुरंत इसे वापस करो, चंद्रभान ने कड़क आवाज में कहा। ब्राह्मण के मित्र ने तुरंत अपने कंधे पर लटका झोला उठाया और उसमें से 3 रत्न निकालकर ब्राह्मण को दे दिए। राजा भोज जो भेष बदल कर चंद्रभान की बातें सुन रहे थे, उनको उसके न्याय पर बहुत आश्चर्य हुआ। तभी चंद्रभान की नजर राजा पर पड़ी, उसके हाथ पैर फूल गए, वह कूद कर टीले से नीचे आया और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए महाराज, डरो नहीं, हम तुम्हारे न्याय करने के ढंग से काफी प्रसन्न हैं। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही।
जी कौन सी महाराज सरकार, कौन सी बात?
चंद्रभान हाथ जोड़कर राजा से पूछने लगा। तुम मामूली चरवाहे के लड़के हो, तब तुम इतना स्वच्छ न्याय कैसे कर लेते हो? भोले से चंद्रभान ने राजा को बताया।
जी पता नहीं महाराज, मैं जब इस टीले पर चढ़कर बैठ जाता हूँ, मुझे ना जाने कौन सी शक्ति आ जाती है।
राजा भोज समझदार थे, वे समझ गए कि हो ना हो यह टीले का ही कमाल है। सैकड़ों मजदूर उस टीले की खुदाई में लगा दिए गए। काफी गहराई तक खुदाई करने के पश्चात मजदूरों को एक राज सिंहासन दिखाई दिया। यह खबर तुरंत राजा भोज तक पहुंचा दी गई। राजा भोज ने आदेश दिया कि सिंहासन को राजमहल में लाया जाए। सिंहासन इतना सुंदर था कि उससे नजर ही हटाना मुश्किल था। सिंहासन पर चारों ओर आठ आठ पुतलियां बनी थीं। सभी पुतलियां हाथ में कमल लिए खड़ी थीं। पुतलियां इतनी सजीव लगती थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। राजपुरोहित जी ने राजा का सिंहासन पर बैठने का शुभ घड़ी निकाली। शीघ्र ही सिंहासन पर बैठने का शुभ दिन आ गया। राजा भोज ने जैसे ही अपना दाहिना पैर सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ाया, तभी एकाएक चमत्कार सा हुआ। सिंहासन पर जुड़ी सब 32 पुतलियां खिलखिला कर हंसने लगी। इस चमत्कार को देखकर सारे दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। राजा भोज ने अपने कदम पीछे लिए और पुतलियों से पूछा, मुझ में ऐसी क्या बात है जिसे देख तुम सारी हंस रही हो? राजा भोज का प्रश्न सुनकर एक पुतली अपने स्थान से बाहर आई। उसका नाम रत्नमंजरी था। काबुली वाले ने अपना डमरू बजाते हुए बोला, इसके साथ ही पूरी होती है आज की कहानी।
अरे नहीं नहीं काबुली वाला, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ ना, प्लीज बताओ ना, राजा भोज सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ पाए? रत्नमंजरी ने क्या बोला?
सभी बच्चे काबुली वाला से पूछने लगे। हाँ बच्चों, इसके आगे कहानी मैं तुम्हें कल सुनाऊंगा और तुम्हें धीरे धीरे यह समझ में आएगा कि बुराई की कभी जीत नहीं होती।
जब सभी बच्चे जाने लगे तो सुप्रिया भी अपने घर आ गई। उस दिन सुप्रिया के मुंह पर पूरे दिन एक ही बात थी, बुराई की कभी जीत नहीं होती, बुराई की कभी जीत नहीं होती, बुराई की कभी जीत नहीं होती।